नमस्ते। आज हम सावित्री बुक टू कैंटो 14 द वर्ल्ड सोल इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही सुंदर कैंटो है। सुंदर तो सभी कैंटो हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य हमें बताए गए हैं जो साधारणतः हम लोग योग की लिटरेचर में भी नहीं पाते हैं। जैसे कि हम लोग ये सुनते हैं कि हम सबके अंदर एक आत्मा होती है, मृत्यु के बाद हम वो आत्मा चली जाती है शरीर को छोड़कर, वापस आ जाती है पुनर्जीवन। लेकिन ये प्रोसेस आमतौर पर एक बड़ी स्केची सी चीज़ है कि इसमें पाप पुण्य के हिसाब से कोई हम जाते हैं हम लोक में या किसी अन्य लोक में जहाँ चित्रगुप्त हमारा हिसाब किताब करके हमें वापस भेज देते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारे कर्म कैसे हैं। ये हम लोग आमतौर पर, कम से कम जो हम लोग एक साधारण व्यक्ति पुनर्जन्म के बारे में समझता है वो ये है। यहाँ पर श्री अरविंद हमको पुनर्जन्म के बारे में एक बिल्कुल नया सत्य प्रकट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोग एक व्यक्तिगत आत्मा के बारे में सुनते हैं और एक परमात्मा के बारे में सुनते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन। लेकिन आत्मा परमात्मा के बीच में एक और सत्य है जो पुराने मिस्टिक लिटरेचर में है, भारतवर्ष में तो बिल्कुल निश्चित रूप से है, लेकिन जो अब हम विस्मृत कर चुके हैं, और वो ये है कि एक ही भगवान के, डिवाइन के तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और वो व्यक्तिगत प्रत्येक मनुष्य के अंदर इंडिविजुअल डिवाइन हमें हमारी प्रकृति के माध्यम से गाइडेंस देते हैं। तो उनका मनुष्य जब ये कहता है कि मैंने अपने अंदर भगवान को खोज लिया है, तो वास्तव में उन्होंने, उस व्यक्ति ने अपने सोल के मार्ग से जा करके इंडिविजुअल डिवाइन को अपने अंदर प्राप्त कर लिया, और फिर वो उनको नति समर्पण करता है और फिर वे उसका संचालन करने लगते हैं। तो ये एक संभावना है। एक दूसरा, जैसे कि एक इंडिविजुअल की के अंदर डिवाइन है, वैसे ही ये सारी विश्व विराट चेतना जिसमें मन के जितने लोग जिनके बारे में हमने पढ़ा, और प्राण जगत के अनेकों लोग वो भी हम लोगों ने पढ़ा, और भौतिक जगत, ये सारी जो विश्व चेतना है इसको अपने अंदर समेटे हुए, अपनी विश्व विराट चेतना में समेटे हुए एक कॉस्मिक बीइंग। अब इनको एग्जैक्टली हिंदी में अगर हम इस ट्रांसलेट करना चाहें तो विश्व पुरुष या विश्व आत्मा, लेकिन कोई भी शब्द सटीक नहीं है। इसलिए श्री अरविंद ने जो ओरिजिनल वर्ड यूज़ किया, वर्ल्ड सोल। वर्ल्ड सोल कौन है? ये भगवान का, उसी एक दिव्य का वो दूसरा एस्पेक्ट है जो सारे विश्व को अपने अंदर धारण किए हुए है, और धारण भी किए हुए और सारी सृष्टि को, विश्व को, अपने विश्व के अज्ञान और सत्य दोनों के द्वारा वो संचालित करते हैं। तो विश्व चेतना के दो हिस्से होते हैं, उसमें कॉस्मिक इग्नोरेंस भी है और कॉस्मिक ट्रुथ भी है। तो जो वर्ल्ड सोल है वो तो ट्रुथ के आधार पर ही काम करती है, लेकिन वो विश्व में जो अभी अज्ञान है उसको वो नज़रअंदाज नहीं करती हैं, उसके द्वारा उसको भी उपयोग में लाती हैं हमारे विकास के लिए, इंडिविजुअल की प्रगति के लिए। और इसके परे अब जो वर्ल्ड सोल हैं वो कॉन्टैक्ट में है अपने से भी ऊपर, यानी अपने ही एक हायर ट्रांसेंडेंट परात पर, भगवान का एक परात पर की एक परात पर सत्ता है, उससे कांटेक्ट में रहती हैं, लेकिन वहाँ से वो जितना रिसीव करती हैं उतना ही वो विश्व के संचालन में लाती हैं। जब कोई नई चीज़ को आना है, जैसे कि इस बार हम लोग पढ़ते हैं सुप्रामेंटल ट्रुथ, तो लोग ये कहते हैं कि सुप्रामेंटल ट्रुथ को वो नहीं जानते, कि ट्रेडिशनल योग में उसका एक कहीं दूर से दर्शन है, लेकिन उसका डिटेल्स हमें नहीं मिलते हैं। और इसका कारण ये है कि विश्व चेतना की के अंदर प्रवेश करके या मन की उच्चतम ऊंचाइयों पर चढ़कर हम देख तो सकते हैं कहीं दूर कोई ग्लिम्स, लेकिन हम उसको ला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें विश्व चेतना के घेरे से बाहर जाना होगा। और विश्व चेतना के घेरे से बाहर जाने के लिए जो भी प्रयास हुए हैं वो केवल महानिर्वाण के लिए हुए हैं, कि एक बार हम उससे बाहर चले गए तो हम वापस नहीं आ सकते। और इसका एक औचित्य भी है। औचित्य यह है कि ये हमारी जो जन्म जन्मांतर रीबर्थ के द्वारा प्रगति चलती रहती है, वह तब तक चलती है जब तक हम स्वयं को नहीं जान जाते और भगवान को नहीं जान जाते। जब ये हमारी स्कूलिंग समाप्त हो जाती है, तभी हमारे पास ये चुनाव होता है कि हम इस विश्व चेतना के घेरे को पार करके वहाँ चले जाएं, जिसको कई लोग अनमैनिफेस्ट भी कहते हैं, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, और वहाँ जाकर अधिकांश जो सोल्स ने इस तरह की यात्रा ली है या जैसा उनको प्रतीत होता था, वो इसके आगे क्या है इसको जानने की बजाय उसमें जाकर के स्वयं को निमज्जित कर देती थी, डिसॉल्व कर देती थी निर्वाण की अवस्था में, महानिर्वाण की अवस्था में। लेकिन यहां पर शेरविंद सीमा जो स्वयं उस परात पर लोक से आ रहे हैं या परात पर अवस्था से आ रहे हैं, परात पर ब्रह्म हैं, वे एक नई चीज को संसार में ला रहे हैं विश्व चेतना के अंदर प्रकट करने के लिए। ये अवतार का काम होता है क्योंकि विश्व चेतना व्यक्तिगत चेतना की ही तरह है, उसके अंदर जैसे जैसे नई चीजें आती हैं वो भी विस्तृत होती जाती है। जैसे हम देखते हैं कि स्पेस एक्सपैंड करता जा रहा है, ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है, आप कोई पूछे कि किसमें एक्सपैंड कर रहा है, कैसे एक्सपैंड कर रहा है, तो ये अपने आप में एक गुत्थी है। समय, समय भी बढ़ता जा रहा है, कब तक बढ़ेगा? अभी तक हम लोग अगर समय की गणना करें उस क्षण से जब से बिग बैंग हुआ तो हम कह सकते हैं कि इतने बिलियन ट्रिलियन ईयर्स हुए, लेकिन ये कब तक चलेगा? तो अगर हम देखें तो एक अवस्था ऐसी है जिसमें देर इज एंडलेसनेस ऑफ स्पेस, स्पेस भी अपने आप में स्ट्रेच करता जा रहा है और करता जाएगा, कहां उसका अंत है हम नहीं कह सकते। और वैसे ही देर इज ए स्टेट इन विच वी कैन से देर इज एन एंडलेसनेस ऑफ टाइम, यानी टाइम ही इटर्निटी की ओर जा रहा है, उसका कोई अंत नहीं है, हम उसके बारे में कह नहीं सकते कि उसका कहां अंत होगा। तो विश्व चेतना जैसे जैसे अभी विश्व चेतना के अंदर मनोमय लोक, प्राणमय लोक और पृथ्वी लोक, ये तीन लोक हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोक हैं, और जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा तो सुपर माइंड से विश्व चेतना रिसीव तो करती है, लेकिन अभी वो सुपर माइंड को वो पीछे छिपा हुआ है, वो उसको अपने अंदर नहीं धारण कर सकती है क्योंकि अभी तैयारी नहीं है इसकी। अब आगत समय में ये जरूर होगा कि विश्व चेतना में जब व्यक्ति प्रवेश करेंगे तो वो सुप्रामेंटल का एक टच लेकर के संसार में काम करेंगे। व्यक्तिगत विकास इन तीन स्तर पे होता है। अब संभावना है कि कोई योगी अपने अंदर के भगवान को प्राप्त कर ले और वहीं से खुश हो जाए, और अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है स्वयं अपने अंदर डिवाइन को पाना। ये संभव है कि वो विश्व चेतना को ना जाने हुए सीधा माइंड से बढ़ता हुआ एक वास्ट इम्पर्सनैलिटी जो हम लोगों ने पढ़ा इन द सेल्फ ऑफ माइंड, वहां पर जाकर के वो बिल्कुल एक निर्वाणिक अवस्था, क्योंकि वो मन की वो उच्चतम शिखर है जहां वो प्राण जगत पृथ्वी के सब कुछ से डिटैच हो जाता है, और अगर वो वहां से देखता है तो ये सारा संसार मात्र एक सिनेमा की तरह लगता है और जिसमें कोई तत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो उस सत्य को नहीं पकड़ पाया है जो रिकनसाइल करता है। और इसी वास्ट इम्पर्सनैलिटी, इस निर्व्यक्तिक सत्ता को कुछ लोग निर्वाण, कुछ लोग एक प्रकार से निर्गुण ब्रह्म, जहाँ कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं रहती हैं, सब ड्रॉप हो जाती है, वहाँ इस प्रकार से वो इसको अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से एक तीसरी संभावना है कि किसी एक देवता को पकड़ करके हम हेवेंस ऑफ द आइडियल, ये भी ओवर माइंड की, ये सारे ओवर माइंड के कई लेयर्स हैं, ओवर माइंड एक है लेकिन इसके कई लेयर्स हैं। तो निम्नतम लेयर में हम ये देखते हैं कि इन द सेल्फ ऑफ माइंड एंड द हेवेंस ऑफ द आइडियल, दोनों ही सगुण और निर्गुण की दो अवस्थाएं हैं, तो एक देवता को पकड़कर वो उच्चतम ओवर माइंड के लेयर पे जाके उन्हीं को भगवान मानकर, और एक सेंस में जो उच्चतम देवता है वो अल्टीमेटली भगवान से जुड़े हैं क्योंकि उन्हीं का एस्पेक्ट है, लेकिन वो वहां पर जाकर उनके साथ निवास कर सकता है। या ये भी संभव है कि वो किसी भी चेतना की सीढ़ी से सीधा उस परात्पर में छलांग लगाकर अपने को डिसअपियर, बिल्कुल गायब हो सकता है, सृष्टि के पूरे क्रम से गायब हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं मनुष्य के अंदर हैं, लेकिन श्री अरविंद अब एक नई संभावना, ये जो तीसरी हम लोगों ने बात की तो उसमें विश्व चेतना के संपर्क में नहीं आएगा, वो नहीं जानेगा कि कोई डिवाइन कॉस्मिक बीइंग है या कॉस्मिक स्पिरिट है, क्योंकि वो उस मार्ग से नहीं गया है, और हो सकता है वो इंडिविजुअल डिवाइन को भी नहीं जाने क्योंकि उसने एक इम्पर्सनैलिटी में जाकर के भगवान को प्राप्त किया है, उनके उस एस्पेक्ट में जाकर के उसने स्वयं को एक द्वार बनाकर या एक अवस्था बनाकर, क्योंकि वो एक प्लेन नहीं है, वो एक स्टेट है इन द सेल्फ ऑफ माइंड, वहां जाकर वो अपने को अवस्थित कर दे और फिर वहीं से खिसता हुआ चला जाए, बिल्कुल जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सारी संभावना है, लेकिन श्री अरविंद विश्व चेतना के परे जो ट्रांसेंडेंट है, परात्पर है, जो हम लोग बुक थ्री में पढ़ेंगे, वहां से एक नई संभावना को धरती पर लेकर प्रकट कर रहे हैं। तो वो जब धरती पर लेकर प्रकट कर रहे हैं उस संभावना को, तो अब वो भी विश्व चेतना का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अभी हम उस अशुपति वहां पहुंचे हैं जहां अब इन द सेल्फ ऑफ माइंड, जहां हम कह सकते हैं कि उन्होंने सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों का, हेवेंस ऑफ द आइडियल में सगुण ब्रह्म और इन द सेल्फ ऑफ माइंड में निर्गुण ब्रह्म, अब वो इसके भी पार जाना चाहते हैं क्योंकि वो इस व्यक्तिगत अनुभव से, इस व्यक्तिगत संसिद्धि से उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य है इस धरती के अंदर एक ऐसी संभावना प्रकट करना जो अब तक नहीं हुई है, और वो विश्व चेतना के अंतर्गत वो संभावना है ही नहीं। इसलिए श्री अरविंद बताते हैं कि मेरा योग बिल्कुल नया है, आज तक जो कभी नहीं हुआ वो घटित होने जा रहा है। तो इसके पहले कि वो इसके परे जाएं, उनका साक्षात्कार होता है वर्ल्ड सोल से, और ये साक्षात्कार किसी व्यक्तिगत एफर्ट से नहीं, वो एक समय आता है यदि कोई इसके लिए डिस्टाइंड है तो विश्व, जैसे हम गीता में देखते हैं कि श्री कृष्ण अपना विराट रूप ओनली एज ए ग्रेस दर्शन करवाते हैं अर्जुन को, क्योंकि वो उस समय की मांग थी। वरना अगर हम हिस्ट्री देखें स्पिरिचुअल लिटरेचर की, तो बहुत रेयरली हमको पढ़ने को मिलता है उस विराट पुरुष के दर्शन, कुछ एक ऋषियों ने किए हैं, लेकिन उसके परे जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री अरविंद उस अवस्था में जब पहुँच जाते हैं तो वर्ल्ड सोल उनका जो अनुभव है उसका वर्णन कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, हमारी आत्मा सेल्फ साइकिक बीइंग हर बार मृत्यु के बाद निकल करके सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ प्राण जगत मनोमय जगत वहीं तक जाता है, उनकी गोद में विश्राम करके वापस चला आता है। तो ये दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इसमें। और तीसरी चीज़ कि अगर इसके परे जाना है तो हेड पे कौन खड़ी हैं, हर जगह हम जगन माता को पाते हैं, वर्ल्ड मदर। तो वर्ल्ड मदर, यूनिवर्सल मदर, हम जब माता पुस्तक में पढ़ते हैं कि श्री माँ के तीन एस्पेक्ट्स हैं, ट्रांसेंडेंट, यूनिवर्सल या कॉस्मिक एंड इंडिविजुअल, तो एक अपने विराट कॉस्मिक फॉर्म में जगन माता खड़ी हैं और वे ही अलाउ कर सकती हैं कि हम इसके पार जाएं या ना जाएं। तो ये तीनों चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। अब तीनों अनुभव थोड़े थोड़े हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ये है बुक 2 कैंटो 14 द वर्ल्ड सोल, और पेज है 289। अब इसमें हम एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखते हैं कि जब इस अवस्था की ओर, इस दिशा की ओर जब श्री अरविंद जाते हैं तो अलग अलग अशुपति जा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के नाद स्वर इसका वर्णन है। और ये वास्तव में अगर हम इसके पहले कि हम वर्ल्ड सोल से, क्योंकि वो फॉर्मलेस हैं, उन्हीं से सारे पंच महाभूत निकलते हैं और सारे फॉर्म्स प्रकट होते हैं, तो ये नाद ब्रह्म के रूप में उनसे उनका साक्षात्कार हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उनके ये दो, एक नाद स्वर के रूप में और एक ज्योतिर्ब्रह्म के रूप में, इन दोनों के दर्शन करके फिर उनसे प्रकट, उनसे साक्षात्कार होता है। यानी कि जो लास्ट एस्पेक्ट होता है फॉर्म का, वो इस तरह का रूप नहीं होता है जैसा हम लोग देखते हैं किसी को। अगर वो चाहें तो एक रूप सा, एक हल्का सा रूप धारण कर सकते हैं, जैसे पानी के ऊपर रूप या आकाश में कोई रूप अचानक प्रकट हो जाए, वो ईश्वर की इच्छा। नहीं तो अब वो फॉर्म के वर्ल्ड से फॉर्मलेस की ओर जा रहे हैं, उसके बॉर्डर्स पर हैं। तो लास्ट जो फॉर्म्स हैं, जो, या हम अगर रिवर्स करके देखें तो फॉर्म्स बनने के पहले सबसे पहले एक चिदाकाश में एक नाद स्वर के रूप में प्रकट होती है सृष्टि, और वो नाद स्वर धीरे 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 करके रूप लेने लगता है। अनेकों, एक स्वर से अनेकों स्वर निकलते हैं और वे स्वर एक दूसरे से आपस में घात प्रतिघात के द्वारा फॉर्म की तरफ जाते हैं। फिर उसके अंदर घात प्रतिघात से अग्नि निकलती है, अग्नि जो अग्नि का तत्व निकलता है वो उनको बाइंड करता है। फिर उसके बाद अग्नि के अंदर से जो जल तत्व है वो उन फॉर्म्स को अट्रैक्ट और रिपेल करता है एक दूसरे से, और उसके बाद वो ठोस लेने के लिए, ठोस रूप लेने के लिए जल तत्व के अंदर से पृथ्वी तत्व निकलता है, और इस प्रकार से फॉर्म्स बनते हैं। तो प्रारंभ में हम देखते हैं आकाश, तो आकाश के अंदर नाद, ये प्रथम वो वाइब्रेशन, पहला वाइब्रेशन। फिर वायु तत्व, वायु तत्व जब निकलता है तो मॉडिफाई कर देता है, यानी ये वाइब्रेशन जो एक दिशा में जा रहा है, जो अपने आप बस फैलता जा रहा है, वो वायु तत्व आके ये स्टर्स को, ये एक ही वाइब्रेशन है जिनको मॉडिफाई करके मानो एक दूसरे से घात प्रतिघात करवाता है, और फिर उनके घात प्रतिघात से ऊर्जा जो प्रकट होती है वो अग्नि के रूप में प्रकट होती है। तो ये पंच महाभूत वहां से निकलते हैं। तो लास्ट में जब हम जाते हैं इस सीढ़ी, इस पंचमहाभूत से, अभी हम लोग पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो हम बाकी तत्व भी हमारे अंदर, ये तत्व सूक्ष्म है, ये स्थूल में केवल उनका एक सांकेतिक रूप है। तो जल तत्व हमारे अंदर हो जाता है, वो प्राण तत्व जो अट्रैक्शन रिपल्शन कराता है, वायु तत्व हमारे अंदर वाणी का और मन की गति का तत्व हो जाता है, अग्नि तत्व हमारे अंदर विल और फेथ और हमारे साइकिक बीइंग का प्रतीक है, और जो आकाश तत्व है वो हमारे अंदर मन और मन के परे जो उड़ान है, जो मन एकदम चला जाता है इन्फिनिटी की ओर, बाउंडलेसनेस की ओर, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे बड़े सुंदर अनुभव हैं जो जिसमें श्री अरविंद बताते हैं कि कैसे कैसे स्वर सुनाई देते हैं, ये जो नाद योगी हैं वे इनके बारे में कहते हैं, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर एक हम लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब गांव में बैल जा रहे हैं कहीं दूर, अब आज के आज हम लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन बचपन में जो लोग गांव में रहे हैं कि बैलों के पाँव में घुंघरू बांधते थे और उनके गले में घुंघरू बांधते थे, तो टिंकलिंग, अब वो कई लोग जा रहे हैं लेकिन सुनाई क्या देता था, वो टिंकलिंग ऑफ द बेल्स, तो ऐसा एक स्वर है। और फिर उसी प्रकार से एक दूसरा स्वर है जो क्रिकेट, जैसे अगर हम लोग बैठे हों रात को तो कभी कभी हम लोग एक आवाज़ आती है झिंगुर की, तो वो झिंगुर की ध्वनि के अनुसार, फिर कभी घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि या फ्लूट की ध्वनि, ये सारी ध्वनियाँ वास्तव में हमको भगवान के साक्षात्कार की ओर ले जा रही हैं। और कई मीराबाई भी इसके बारे में कहती हैं, इस पर पूरा एक योग है आधारित है, जब बहुत पहले किसी ने श्री अरविंद से कहा था कि सुरत शब्द योग के बारे में, कि एक पूरा योग है जिसमें हम शब्द के द्वारा, नाद के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा भगवान की ओर जाते हैं, तो आपने इसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? श्री अरविंद कहते हैं हाँ, बहुत पहले जब मैंने योग प्रारंभ किया था तो इनर बीइंग के खुलने से ये सारे अनुभव होते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। तो ये उनके लिए ये एक नॉर्मल चीज़ थी जब वो बहुत पहले, अब वो बहुत पहले कब था, निश्चित रूप से निर्वाण के अनुभव के पहले, ये बड़ौदा की बात है जब उनका इनर बीइंग खुलता था, और ये सारे अनुभव श्री अरविंद के अपने हैं, लेकिन वो इसके बहुत आगे जाते हैं। ये इसलिए आवश्यक है बताना क्योंकि कई बार हम लोग नाद योग, नाद ब्रह्म, ज्योतिर्ब्रह्म और इन सबको हम सब एक खिचड़ी बनाकर प्रस्तुत करके, इंटेग्रल योगा और श्री अरविंद सब कुछ मिला करके, क्योंकि ये अब एक आजकल हम लोगों ने, मॉडर्न मानसिकता ने वो सूक्ष्मता खो दी है जो एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के अंदर होती है, इसलिए हम सब चीज़ों को एक साथ रख देते हैं, सारे योगी योगी हैं, ये भी वो भी योगी हैं, सब बराबर हैं, लेकिन योग में भी इतने द्वार हैं, इतने प्रकार के अनुभव हैं, कोई निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करता है, कोई सगुण ब्रह्म को प्राप्त करता है, कोई दोनों को जानता है कि एक ही सत्य के रूप हैं, कोई जगन माता का दर्शन करता है, कोई हृदय के अंदर ईश्वर को प्राप्त करता है, ये सब अनुभव हैं भगवान के या भगवान की ओर ले जाने वाले, लेकिन ये सब एक नहीं है, ये समझ लेना, ये मॉडर्न माइंड की एक की सब रास्ते एक की ओर ले जा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार का कहने वाली बात हुई कि आप डेजर्ट में किसी भी तरफ चले जाओ, अंत में आप जमीन मिलेगी, हाँ मिलेगी, लेकिन आप कहाँ रुक जाओगे, कहाँ मर जाओगे, किस ओएसिस में अटक जाओगे, ये कोई नहीं जानता, ये सच है, आप मरुभूमि में हैं, आप कोई भी रास्ता ले लीजिए, अंत में आपको भूमि मिलेगी, कहीं ना कहीं समुद्र या भूमि, यू विल फाइंड इट, यू विल गो आउट, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये इस तरह से जब हम ब्लर कर देते हैं, जब कोई व्यक्ति जब मरुभूमि में फंसा होता है तो उसको ये बताया जाता है कि तुम किस मार्ग से जाओगे तो तुमको ये मिलेगा, किस मार्ग से जाओगे तो कहाँ ओएसिस है, किस मार्ग से जाओगे तो जल्दी तुम्हें भूमि मिलेगी, इत्यादि इत्यादि, अगर हम उसको ऐसा कुछ कह दें कि किसी भी मार्ग को पकड़ लो वो भूमि मिलेगी या नदी मिलेगी या समुद्र मिलेगा, ये कुछ इसी तरह की बात हम लोग करते हैं। खैर श्री अरविंद जब ये बात हो रही, जब ये अनुभव कर रहे हैं तो वो बहुत आगे चले गए हैं, इसमें टेम्पल गोंग का वर्णन है, फिर हमारी आंतरिक इंद्रियां, इनर सूक्ष्म इंद्रियां खुल जाती हैं, तो इंसेंस की स्मेल भी आती है, सुगंध, एक पूरा सुगंध का संसार है, क्योंकि जो पंच महाभूत हैं ये पंच इंद्रियों के द्वारा पकड़े जाते हैं, तो अगर हम देखें तो ये जो आकाश के अंदर जो वाइब्रेशन है ये किनके द्वारा, श्रवण इंद्रियों के द्वारा, तो जैसे हमारी बाहरी श्रवण इंद्रियां हैं वैसे ही हमारी आंतरिक श्रवण इंद्रियां हैं, जो प्रकाश है, जो अग्नि तत्व है, तो वो हम कैसे पकड़ते हैं, आंखों के द्वारा, और जैसे हमारी बाहरी आंखें हैं वैसे ही हमारी एक आंतरिक सूक्ष्म आंखें हैं जिनके द्वारा हम इन सूक्ष्म तत्वों से वो वार्तालाप का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह हमारी जिह्वा रस यानी वो जल तत्व को पकड़ती है, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी स्मेल को पकड़ती है, टच को पकड़ती है, और इस प्रकार से अगर हम देखें तो सारे जो हमारे तत्व हैं इनसे कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेंस है और सेंस के अनुसार एक हमारा अनुभव है। तो लास्ट में जो हायरार्की है उसमें अगर हम वैसे भी अगर अपने शरीर को देखें तो शरीर में सबसे दूर कौन सी सेंस ऑपरेट करती है, वो है टच, और टच के बाद हम देखते हैं कि आता है टेस्ट, टेस्ट के बाद आती है स्मेल, स्मेल के बाद आती है हमारी आंखें और हमारी हमारे श्रवण इंद्रिय कान, तो ये पूरी, उसके आगे माथा। तो ह्यूमन बॉडी एक सिंबॉलिक रूप में पंच महाभूत को ही सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, और जो माथा, जो हमारा मस्तक है जो आकाश तत्व की ओर, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर चिदाकाश है, तो इट रिप्रोड्यूसेस द सेम थिंग। तो अंत में हमें ये सारे अनुभव होते हुए एक सूक्ष्म गंध, हम देखते हैं गीता में इसका वर्णन है, सूक्ष्म दृष्टि, विजन्स नहीं, वो प्रकाश, अलग अलग रंगों के प्रकाश, अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग स्वर, अलग अलग प्रकार के इवन स्पर्श महसूस होते हैं, मानो कोई आकर के हमको स्पर्श करके चला गया। कई बार योग में इस तरह के अनुभव प्रारंभ में होते हैं और लोग बाद में सोचते हैं कि ये इमेजिनेशन था या रियल था, और श्री अरविंद बताते हैं कि यदि तुम इन अनुभवों को इमेजिनेशन समझने लगोगे, ये प्रारंभिक अनुभवों को, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। ये अनुभव आते हैं, और टेस्ट आता है, इसकी भी बात श्री अरविंद कहते हैं, अमृत चखना या जुबान का टेस्ट बदल जाना। कई बार हमारी जिह्वा का टेस्ट बदल जाना बड़ा इंडिकेटर होता है कई चीज़ों का, बहुत सारी निम्न प्रकृति की गतियों का भी और उच्च गतियों का भी। तो ये सारी चीज़ें प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में, जब बुखार होता है तो हम देखते हैं कि टेस्ट बदल जाता है, उसी प्रकार से जब हम चेतना की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हैं तो हमारी जिह्वा का टेस्ट बदल जाता है। तो ये सारे अनुभव प्राप्त करते हुए जब वहां पर अशुपति पहुंचते हैं, तो ये लास्ट में थोड़ा वर्णन है, आर्डेंट विद एक्सटेसी इन ए स्लम्बरस नून, एक बी क्रून हनी ड्रंक, इसका भी अनुभव होता है, जैसे वो भौरा, वो भी मक्खियां, मधुमक्खियां, मधुमक्खियों की जो ध्वनि है वो भी सुनाई देती है। और तब क्या होता है, और द फार एंथम ऑफ ए पिलग्रिम सी, एन इंसेंस फ्लोटेड इन द क्विवरिंग एयर, ए मिस्टिक हैप्पीनेस ट्रेम्बल्ड इन द ब्रेस्ट, एज इफ द इनविजिबल बिलविड हैड कम, एज्यूमिंग द सडन लवलीनेस ऑफ ए फेस। तो भगवान के दर्शन के पहले ये सारे हमें, ये जो पंच महाभूत हैं, ये अपनी प्योरिटी में हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि इनकी जो ओरिजिन है वो ये है। बाद में ये सब वही सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है, लिमिटेड हो जाती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि इनकॉन्शियंट का एक्शन है, और जिनकी सूक्ष्म इंद्रिया अवेकेंड है वो इनके द्वारा जान सकते हैं कि कौन उपस्थित है, ईश्वर की उपस्थिति। लोग बताते हैं कई बार, कोई पुरानी साधिका बता रही थी कि कैसे वो जब भी श्री अरविंद का ध्यान करती थी तो श्री अरविंद की उपस्थिति, उनको लोटस की स्मेल आती थी, उससे उन्हें पता चलती थी। और माता जी बताती हैं कि श्री अरविंद की जो सूक्ष्म गंध है वो लोटस की, क्योंकि वो अवतार हैं, लोटस की बहुत सूक्ष्म गंध होती है, आप इवन सामने रख के रियल लोटस को बहुत कठिन होता है उसमें से गंध को लेना, क्योंकि वो छिपी होती है, उसके मूल तत्व में है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न गंधों के द्वारा, वो बाहरी गंध नहीं, सूक्ष्म गंधों के द्वारा। और इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि हम किस प्रकार की साउंड, किस प्रकार के की ध्वनियाँ, किस प्रकार की गंध अपने चारों तरफ हम करते हैं, उसके ही अनुसार वैसी फोर्सेस ड्रॉ होती हैं। एक ऑकल्टिस्ट एक बार बहुत पहले बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस, तो उन्होंने इस प्रकार से बताया, मेरे से बात हो रही थी, बोली कि मैंने देखा है अक्सर कि जब वो लोग सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के धुएं में कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी वाइब्रेशन जो बड़ी बैड होती हैं, जो बड़ी भयानक होती हैं, जो अच्छी नहीं होती, वो ड्रॉन होती हैं। माता जी इस प्रकार से बताती है, मॉरिस मेगर, उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी, जब वो आते हैं तो माँ बताती हैं कि वो अपना एक अनुभव सीमा से बता रहे थे, जिसकी वो पुष्टि भी करती हैं कि ये सत्य है, कि जो लोग सेक्स इत्यादि बहुत अधिक इसमें रहते हैं तो उनके चारों तरफ कुछ एलिमेंटल, एक पंच महाभूत हैं और नीचे वही भूत तत्व में, वो चारों तरफ स्वार्म करते हैं, और इनको व्यक्ति अगर सूक्ष्म दृष्टि जगी है तो ठीक वैसे जैसे हम लोग वायरस का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, या बहुत सारे मॉस्किटोज इस प्रकार से व्यक्ति उनको एक्चुअल अनुभव कर सकता है उन चीजों को। कई कुत्ते बिल्लियां इनके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं इन गंधों के प्रति, और वो इमीडिएटली कई बार आप देखें कि डॉग्स का बिहेवियर चेंज हो गया, भौंकने लगे, क्योंकि वो उस गंध को, उस जगह कोई इस प्रकार की चीज हो रही है जिसके प्रति वो सेंसिटिव हो गए हैं। माता जी एक बार बताती हैं, और खासकर जो विश्व चेतना में उठने लगते हैं, कि उनके शरीर पर बहुत इचिंग होने लगती, खुजली। तो किसने पूछा, माँ क्या हुआ? जगन माता है, उनके शरीर पे कैसे कोई खुजली हो सकती है? कहती, हाँ मेरा एक शिष्य, जिसको वो तो सब शिष्यों को अपने अंदर समेटे हुई थी, मेरा एक शिष्य एक प्रकार की एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहा है जिसमें उसको नहीं होना चाहिए, और वो रेफर करनी थी इसी सेक्सुअल एक्टिविटी को। तो ये सारी चीज़ें, ये एक पूरा विज्ञान है जिसको हम लोगों ने खो दिया है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों के मूल में जा सकते हैं बीमारियों के, और वहाँ ठीक करके हम रोग से पूरी तरह त्राण पा सकते हैं। तो ये उसी विज्ञान का, ये पंच महाभूत का वर्णन जगह जगह आता है, सावित्री में एक बुक 2 कैंटो 1 में भी आता है, जहां वो पंच महाभूत का एक पासिंग वर्णन करते हैं। यहां अब उनकी प्योरिटी में बता रहे हैं कि इनका जो ओरिजिन है वो कितना सुंदर है। एज्यूमिंग द सडन लवलीनेस ऑफ ए फेस एंड क्लोज ग्लैड हैंड्स कुड सीज हिज फ्यूजिटिव फीट एंड द वर्ल्ड चेंज विद द ब्यूटी ऑफ ए स्माइल। प्रारंभ में ऐसा लगता है कि अरे वो शायद हैं, पास में हैं, कहीं हैं, तो इस प्रकार का भाव यहां पर इन पंक्तियों में है। द होम ऑफ ए पैशन विदाउट नेम और वॉइस। कौन है उनका, क्या नाम है, आप जिस भी नाम से ले लीजिए, लेकिन ऑफकोर्स भारतवर्ष में चूंकि नाम रखने की एक बड़ी अद्भुत परंपरा है, हम ये उस क्षेत्र की है जहां नाम और रूप वो अपने ओरिजिनल फॉर्मलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में आप अक्सर देखेंगे जो बीइंग का यहाँ डिस्क्रिप्शन है वर्ल्ड सोल का, तो श्री कृष्ण का स्मरण आता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम ही अपने आप में इसका अर्थ है, वो जो हमें आकर्षित करता है, वो जिसके अंदर आकर्षण भरा हुआ है, तो वो आनंद में भी है और वर्ल्ड सोल का भी हम डिस्क्रिप्शन जब पढ़ते हैं तो ऐसा ही कुछ, उनकी स्माइल ऑफ द इनविजिबल बिलेवेड, फ्यूजिटिव फीट कि अभी हैं और अभी चले गए, इस प्रकार की के भाव हमारे अंदर जगते हैं। इनटू ए वंडरफुल बॉडीलेस रेलम ही केम। ये सब जो नाम रूप देह इन सबके परे, जहां से ओरिजिन होता है इनका, अब वहां पे क्या एक्सपीरियंस करते हैं अशुपति, वो हम लोग पढ़ें। द साइलेंट सोल ऑफ ऑल द वर्ल्ड वॉज देयर, ए बीइंग लिव्ड, ए प्रेजेंस एंड ए पावर। तो बीइंग है, प्रेजेंस है, पावर है, उनके रूप का वर्णन नहीं हो रहा है क्योंकि अब वो अपने अरूप अवस्था में, उन्हीं से सारा संसार है, उन्हीं से पंच महाभूत निकले हैं और उन्हीं में वापस समा जाता है, लेकिन वो उनका अपने आप में कोई भी नाम नहीं है, हालांकि वो बहुत सारे नाम, हजारों नाम एज्यूम कर लेते हैं। ए सिंगल पर्सन हु वाज हिमसेल्फ एंड ऑल, क्योंकि उन्हीं से सारी संसार की रचना होती है। एंड चेरिश्ड नेचर्स स्वीट एंड डेंजरस थ्रॉब्स ट्रांसफिगर्ड इनटू बीट्स डिवाइन एंड प्योर। तो वहां पे क्या होता है, जैसे जो भूत आदि हम लोग अनुभव करते हैं यहाँ पे, पंच इंद्रियां जो लिमिटेड हैं, जो क्योंकि अब माइंड के कंट्रोल में है ये इंद्रियां, तो माइंड की तरह वो ड्वेलिटी में जीती हैं, गुड स्मेल बैड स्मेल, ब्यूटीफुल एंड अगली, ये सारे जो ड्वेलिटी, गुड साउंड बैड साउंड, लेकिन वहां पे वो सब अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं क्योंकि वो अपने पुराने दुष्ट स्वरूप में या निम्न स्वरूप में वो रह नहीं सकती हैं, तो गेट ट्रांसफिगर्ड ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो इनकॉन्शियंट की जो पकड़ है, जो माइंड की जो ड्वेलिटीज का प्ले है, वहां समाप्त हो जाता है। तो यहां पर स्वीट एंड डेंजरस थ्रॉप्स, यहां पर जो हम कहते हैं अरे ये बड़ा विकराल है, अरे ये भयानक है, वो सब कुछ वहां जाकर के इट चेंजेस इनटू डिलाइट। और इसका एक एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं कि कई बार कुछ दिनों पहले की बात है, बात हो रही थी कि कौन सी सबसे बड़ी भयानक हॉरर मूवीज किसने देखी हैं, तो एक एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की बात हुई, नई नई आई थी और बड़ी रियली उसमें एक हॉरर था जो लोगों को भयभीत कर सकता है, एक साउंड के द्वारा, कुछ इमेजेस के द्वारा, लेकिन जब इसकी बात हो रही थी, सब लोग बातें कर रहे थे हॉरर मूवी से, तो स्माइल करते हुए हंसते हुए कह रहे थे अरे उस हॉरर मूवी। अब ये क्यों होता है, क्योंकि काल की गति में वो चीज अल्टीमेटली कहीं चर्न होती हुई हमारे अंदर वो डिलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ये नॉर्मली भी होता है, हार्ट ब्रेक का एक्सपीरियंस होता है, उस समय लगता है कि सारा संसार ब्रेकडाउन हो गया, केवल हमारा हृदय नहीं पूरा संसार में प्रलय आ गई है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाद में जब यही अनुभव किसी का होता है तो हम लोग हंस के कह सकते हैं कि कोई बात नहीं है, यू विल गो थ्रू इट एंड ग्रो थ्रू इट। तो ये इसलिए क्योंकि वास्तव में ये सारी सृष्टि अंत में अंततः विश्व पुरुष, विश्व विराट पुरुष, डिवाइन बीइंग अपने यूनिवर्सल चेतना में इसको समेटे हुए हैं। और जो कुछ भी प्रकृति के अंदर होता है, प्रकृति वास्तव में एक यज्ञ के रूप में उनको ही ऑफर करती है। वे अधीश्वर भी हैं, यज्ञ के भी ईश्वर हैं। तो यज्ञ रूप में वो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं और प्रकृति सब कुछ उनके पास ले जाती है। तो जब उनके पास ले जाती हैं तो जैसे किसी भी यज्ञ में कोई चीज़ प्योरीफाई हो जाती है, तो वहाँ जाते ही वो प्योरीफाई हो जाती है, वो अपने मूल स्वरूप में आ ही जाएगी, बाकी सारी चीज़ें वहाँ समाप्त हो जाएंगी। तो ये अद्भुत उनके स्पर्श का आशीर्वाद या प्रसाद मनुष्य को मिलता है। ट्रांसफिगर्ड इन टू बीड्स डिवाइन एंड प्योर, वन हु कुड लव विदाउट रिटर्न फॉर लव। अगेन हम देखते हैं कि मनुष्य कई बार की अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें अनकंडीशनल लव दे, ये संभव नहीं है। संभव है अगर वो साक्षात वर्ल्ड सोल मनुष्य का रूप धारण किए हुए या कोई भक्त है जो अपनी भक्ति के द्वारा वर्ल्ड सोल भगवान के साथ एक हो गया है। माँ एक जगह बताती हैं, कुछ दिन पहले भी ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, कि सच्चा प्यार केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसने भगवान का प्यार प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसके बिना वो हमेशा उसके अंदर प्यार की कमी रहेगी, तो वो प्यार दे नहीं सकेगा, वो चाहेगा, क्योंकि उसको उसका अपना वो तो एक मटके के समान है, जितना पानी उड़ेल देगा उसके बाद। लेकिन अगर यही मटका अगर एक टंकी बन जाए जो जिसमें पानी आ रहा है समुद्र से और कांस्टेंट आ रहा है, मोटर चल रही है या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो कांस्टेंट आ रहा है पानी, तो फिर कोई समस्या नहीं है। तो वो प्यार वो उड़ेलता रहेगा टैप्स के थ्रू अलग अलग वहां पे, लेकिन वो शुद्ध प्यार होगा, वो कभी कोई कंडीशन पर नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशन पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में उस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। माँ जब तपस्या ऑफ लव की बात करती हैं तो यही बात करती हैं कि हमें अपने लिए प्यार के लिए हमें केवल भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, और वहाँ से जब हम रिसीव करते हैं, जो रिसीव करते हैं वो उनकी विल के अनुसार, इसमें व्यक्तिगत चीज नहीं आ सकती। जाम ने स्वार्थ लाए हम बीच में तो हम अपने को कट ऑफ कर लेंगे उस यूनिवर्सल करंट से। तो वो यूनिवर्सल विल के अनुसार कहाँ वो प्यार जाएगा, कहाँ वो प्रेम जाएगा, वहाँ वो बहेगा। वहाँ उसका प्रमाण ये रहेगा कि उसमें रेस्टलेसनेस या कोई इच्छा, मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या लाभ होगा, किसी बाहरी चीज़ पर वो नहीं आधारित रहेगा। वो बिल्कुल अपने फॉर्मलेस एसेंस से स्टार्ट होकर के बाहर तक वो बहेगा, लेकिन वो उस व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहेगा। वो अपने अंदर ही प्रेम को रिसीव कर रहा है उस यूनिवर्सल करेंट से, और दूसरे के भी अंदर, उसके ईगो सेल्फ को नहीं, कहीं अंदर उस सबको आप्लावित करता हुआ उसके अंदर जो डिवाइन है उन तक जा रहा है। तो इस प्रकार से वो डिविनिटी का लिंक जोड़ता है फॉर्म के साथ। ये प्रेम का एक बहुत अद्भुत असर होता है कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो डिवाइन को फॉर्म के साथ, यूनिवर्सल डिवाइन को हमारे इंडिविजुअल फॉर्म के साथ लिंक कर सकती है। होना चाहिए हमारे अंदर, लेकिन जब नहीं होता है तो कभी कभी ऐसा प्रेम जिसने धारण किया है, जैसे डिवाइन मदर जब उन्होंने रूप लिया वो तो ट्रांसेंडेंट प्रेम लेकर के आई, या श्री अरविंद, उनको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती थी, लोग उनको देखकर ही अपने अंदर एक प्रेम अनुभव करने लगते थे। श्री कृष्ण, नाम मात्र से आपके अंदर प्रेम जागता है। क्यों प्रेम जागता है? क्योंकि ये उनका एक छिपा हुआ सत्य है। तो वन हु कुड लव विदाउट रिटर्न फॉर लव, मीटिंग एंड टर्निंग टू द बेस्ट द वर्स्ट। उनके सामने आप कैसी भी प्रॉब्लम रख लो कि मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, अब वो क्या करते हैं, हर चीज का वो सत्य उद्घाटित करते हैं। तो जैसे ही किसी भी चीज के, हम एक जगह जब माँ से किसी ने जिपमर के लिए एक मैसेज दिया था माँ ने, और जिपमर को माँ ने एक्सटेंशन ही बताया था एक प्रकार से, कि वहाँ पे आश्रम का, एक प्रकार से आश्रम का नहीं परंतु हेल्थ के पर्पसेस के लिए एक एक्सटेंशन था। तो माने उनको मैसेज दिया था वेरितास क्यूरितास, तो या क्यूरिते, तो मतलब इंग्लिश में है ट्रूथ क्योर्स। तो तो उनको भी नहीं मालूम है, ये चीज दबी हुई थी, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एक बार जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी तो बात निकली, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कोई मैसेज है, तो उन्होंने निकाला तो ट्रूथ क्योर्स। अब ट्रूथ कैसे क्योर करता है? आप देखिए हम लोग जीवन में कितने दुखी होते हैं, इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये हुआ मेरे जीवन में, वो हुआ। अगर हम अचानक देख लें कि अरे ये सारी चीजों के प्रति ये सत्य है, सत्य क्या है कि एक विजडम है जो हमें वास्तव में प्रगति की ओर ले जा रही है, या अरे ये तो प्रारंभ में इसका इनिशिएशन हमारे से ही हुआ था, हमारी एक इम्पल्स थी जो अभी अपनी परिसमाप्ति तक पहुंची है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक कुएं में गिर पड़े और रोने बिलखने लगे, तो निकालना उसका जरूरी है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि तुम अंधे होके क्यों चल रहे थे कि तुम कुएं में गिर गए। जब वो देखता है कि अरे मैं ही अंधों की तरह चल रहा था, तो मैं कुएं में गिर गया, तो गिरा तो मुझे चोट लगी, तो वो समझ लेता है अचानक कि इसका ओरिजिन कहाँ है। और जब वो हम किसी चीज के ओरिजिन को जान लेते हैं तो वो एक प्रकार से क्योर कर देता है हमको, कि तब हम और भय मुक्त कर देता है, क्योंकि हम उसका रियल इलाज जान चुके हैं। इलाज क्या है, उपाय क्या है, कि अब हमको आंखें खोलकर सचेतन रूप से चलना है। तो यहां पर हम लोग ये भाव भी देखते हैं, मीटिंग एंड टर्निंग टू द बेस्ट द वर्स्ट। तो जो हम वर्स्ट भी जिसको कहते हैं तो वो भी बेस्ट में टर्न हो जाता है, क्यों, वो एक अवसर हो जाता है हमें, हमारे लिए सचेत होने का। माता जी बताती हैं इसके बारे में कि एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति जब योग करने के लिए आई तो कहती माता जी से कि योग के द्वारा तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई मुझे, पहले मैं अज्ञान में थी तो सब अच्छा लगता था, सब लोग समान है, एक जैसे हैं, यही लगता था, अब मुझे अचानक मैं सचेत हो गई हूँ लोगों के प्रति, ये ऐसा भी है वैसा भी है, ये वाइब्रेशंस, ये सारा एक संसार खुल गया है, इससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही। माँ कहती हाँ अभी तुम्हारा अज्ञान छटना शुरू हुआ है, अब तुम्हें और आगे बढ़ो जब तुम इन सब के पीछे वन डिवाइन बीइंग को देखने लगोगी, बट दिस इज अ स्टेज वन हैज टू क्रॉस। तो अब ये जो वर्स्ट स्टेट होती है जहां हम चीजों को बिल्कुल बाहर से देखते हैं, और बाहर से देख करके हम ये समझते हैं कि हमें या तो भगवान ने दूर कर दिया, अबैंडन कर दिया, या नियति ने हमारे साथ ये क्या खिलवाड़ किया है, जब हम उस सत्य को जान लेते हैं तो हम देखते हैं कि नियति ने खिलवाड़ नहीं किया है, नियति तो हमें हमारे अनुरूप, हमारे ही अनुसार, हमारी ही संकल्प और फेथ के अनुसार हमें ले जा रही है, फिर भी एक शॉर्टकट से ले जा रही है उस उच्चतम प्रकटन की ओर। लेकिन चुनाव किसने किया था, हमने किया था, हम भूल गए हैं, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम नियति को कोसते हैं, तो वो अचानक वहां पे जब भगवान मिलते हैं और कहते हैं नहीं तू राह भटक गया था, तुझे इस राह से चलना चाहिए था, या कोई बात नहीं तू इस राह से आया है, कोई बिल्कुल निर्जन सुनसान रास्ते पे चला गया और अंत में अचानक भगवान मिल गए, तो कहते कोई बात नहीं तू इस रास्ते से आया, लेकिन यहां भी मैं ही खड़ा हूं। तो सो टर्निंग टू बेस्ट द वर्स्ट, उस सब को भगवान, इवन इसका एक अनुभव है कि जब कोई एबिस में भी कूद गया भूले भटके, तो वहां पर भी भगवान के हाथों ने उसको थाम लिया। ये सावित्री में इसका वर्णन आता है, बुक 2 कैंटो 8 में, द शॉक, द सडन शॉक, द स्वीटनेस एंड शॉक ऑफ ए डिवाइन एम्ब्रेस। तो वो अचानक वहां पे वो उनको पाता है, तो वो सारा जो वर्स्ट उसके जीवन में वो देखता है कि ये तो शॉर्टकट था वास्तव में मुझे भगवान की ओर ले जाने के लिए। मीटिंग एंड टर्निंग टू द बेस्ट द वर्स्ट, तो ये भगवान करते हैं कि इवन जो वर्स्ट चीजें हमें लग रही हैं हमें उनको ऑफर करना चाहिए, और जब हम ऑफर करते हैं तो वो उसको भी बेस्ट के रूप में टर्न कर देते हैं, बदल देते हैं, ये उनका। और जब हम नहीं ऑफर करते हैं तो फिर हम कॉस्मिक इग्नोरेंस के द्वार से जाते हैं, अंत में वही होगा, इट विल टर्न फॉर द बेस्ट, बट एक लंबी पीड़ा और लंबी प्रोसेस के बाद। जब हम इसको ऑफर कर देते हैं तो वही चीज बहुत शीघ्र हमारे जीवन में घटित हो जाती है। It healed the bitter cruelties of earth, transforming all experience to delight. कैसे करते हैं वो, हाथ रख के। पुराने समय में अब ये कला हम लोग भूल गए हैं, और कोरोना ने तो इसको लगभग खत्म कर दिया है, जो भी बची खुची थी, टेक्नोलॉजी ने भी इसको खत्म कर दिया है। पुराने समय जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये सब चीजें नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, अंकल थे, तो मुझे खुद भी याद है, कुछ लोगों को स्मरण होगा, कि लोग डॉक्टर को भगवान समझते थे। अभी तो पैसा वैसा तो मर्सिनरी हो गए हैं, अटैक भी कर देते हैं लोग, पैसे का हिसाब मांगते हैं, आपने हमसे इतने ले लिए, कोर्ट केसेस भी होते हैं, तो अब वो संबंध एक बदल गया है। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब डॉक्टर को बुलाया जाता था और डॉक्टर देख करके, हमारा हमारी नब्स पकड़ के, सिर पर हाथ रख के, थोड़ा हाथ से देख करके हमारी जहाँ पे दुख रहा है या पेन हो रहा है, फिर जब वो स्माइल करके कहते थे कि कोई बात नहीं है बेटा, ठीक हो जाओगे, उसका जो प्रभाव होता था मुझे लगता है, क्योंकि दवाइयाँ नहीं होती थी ज़्यादा, डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि इसके अंदर में क्या भयानक चीज़ें हो रही होंगी, पर उनको जितना पता होता था, क्योंकि ऐसी भयानक चीज़ें तो ये ज़्यादा मॉडर्न देन है, तब तो ये था कि भाई ये इलाज वाली बीमारी है, ला इलाज है, पर कोई बात नहीं, हम इसको दवाई देते रहेंगे, तो लोग बड़े ग्रेसफुली जाते थे। अभी हम उनको ना जीवन जीने देते हैं ना मरने देते हैं, तो वो डॉक्टर भी जब वो स्पर्श करता था तो उस स्पर्श से ही ये सारा जो अंदर भाव है, ऐसा लगता था भगवान ने छू करके हमें कह दिया कि बच्चे तुम ठीक हो जाओगे। एंड इट यूज्ड टू हैव एन इफेक्ट जो हम पूरी तरह भूल गए हैं, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा, हमारे और भगवान के बीच में टेक्नोलॉजी आ गई है। तो भगवान कैसे हील करते हैं, वो एक मुस्कान के द्वारा, और उसमें तब हमें ये आश्वासन मिल जाता है कि जो भी हमारे जीवन में होगा, चाहे हम हील होंगे या हम शरीर हमको त्यागना है, दोनों ही अवस्थाएं उत्तम हैं, दोनों के लिए हम सहस्र प्रस्तुत रहते हैं। इंटरवीनिंग इन द सॉरोफुल पाथ्स ऑफ बर्थ, ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग ऑल एक्सपीरियंस टू डिलाइट एंड हील द बिटर क्रुएल्टीज ऑफ अर्थ, इसका एक और मुझे एक स्टोरी स्मरण आ रही है। एक डिवोटी थे जो 70 साल की उम्र में अचानक माँ श्री अरविंद की ओर मुड़े, विश्वास ज़्यादा नहीं करते, बड़े रैशनल एनालिटिकल, पर उनको कुछ अच्छा लगता था सावित्री के बारे में, सावित्री पढ़ते थे, पर कहते थे बाकी तुम लोग डिवाइन मदर, हाँ शी वॉज ए ग्रेट लेडी, इससे आगे वो कुछ बाद में वो टर्न हुए, वो एक दूसरी कहानी है, बट अराउंड 70, उसके पहले सावित्री में उनको बड़ा मज़ा आता था कि ये क्या पोएम लिखी है श्री अरविंद ने, वंडर करते थे। तो जब उनकी मृत्यु का समय, तो सब लोगों ने उनको यहाँ से ड्रिप ये वो सारा लगाया हुआ, सबके चेहरे इतने सीरियस, तो अचानक वो कहते तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो, तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या कहें, तो कहते माँ श्री अरविंद सामने खड़े हुए, व्हाई आर यू हैविंग सच फेसेस। एक और साधिका की मुझे, और उन्होंने उसके बाद बड़े सुंदर ढंग से पीसफुली अपने शरीर को छोड़ा। एक और साधिका की बात स्मरण है जिनको कैंसर निकला था, और फिर वो सारे अगेन ये सारे ड्रिप्स ये मशीन सारी लगी हुई, तो वो फिर जब बच के निकलती हैं तो अपना अनुभव बताती हैं कि माँ उनके पास आई जब ये सब चीज़ें लगी हुई थी, मशीन से उनका जीवन चल रहा था, तो वो माँ कहती हैं व्हाट इज ऑल दिस फॉल्सहुड अराउंड यू, तो तब उन्होंने डॉक्टर से कि ये सब निकालो निकालो, अल्टीमेटली निकाल के वो वापस आई। फिर कैंसर के बाद भी आई थिंक फ्यू ईयर्स और काफ़ी महीनों तक वो बिल्कुल सचेत अवस्था में, तो ये एक अद्भुत अनुभव होता है कि भगवान का स्पर्श कैसे हमारी इवन जो जिसको कहते हैं मरणासन अवस्था, उसको भी जब व्यक्ति को निश्चित है कि हमारी मृत्यु सामने खड़ी है, हमारा शरीर टूटने वाला है, तब भी वो एक डिलाइट आनंद से जाते हैं। ये चीज़ हम लोग अभी भूल गए हैं क्योंकि सब कुछ एक मैकेनिकल इस प्रकार का हो गया है। इसीलिए सबसे भयंकर चीज़ है अस्पताल में जाके मृत्यु को प्राप्त होना, क्योंकि चारों तरफ भय एंग्जाइटी इसी के फॉर्मेशन से, और घर में कम से कम व्यक्ति शांति के साथ अगर कोई विश्वास करता है तो कोई चित्र है जो उसको स्मरण दिलाए भगवान का, इस प्रकार से लोग गंगा जल मुंह में डाल के, तुलसी की पत्ती डाल के, मतलब वो एक अंदर में फेथ के द्वारा जो वो भगवान का स्मरण करते हुए जाते थे। अभी वो चारों तरफ वो उनको भी समझ नहीं आता होगा कि ये डॉक्टर रूपी देवदूत हैं या पास में यमदूत हैं, सारे मिक्स हो रहे होंगे। तो ये एक भगवान का स्पर्श क्या कर सकता है उसका वर्णन है। इंटरवीनिंग इन द सॉरोफुल पाथ्स ऑफ बर्थ इट रॉक द क्रेडिल ऑफ द कॉस्मिक चाइल्ड। कॉस्मिक चाइल्ड कौन है? हमारी साइकिक बींग है, वही इसको इस पालने को वही झुलाते हैं। रॉक द क्रेडिल, और कहाँ पर यह क्रेडिल? पूरे कॉस्मॉस में ये झूला झुलाया जा रहा है। एंड स्टिल्ड ऑल वीपिंग विद इट्स हैंड ऑफ जॉय। बच्चा रो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्यों रो रहा है, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है। माँ की गोद में जाता है तो बच्चा चुप हो जाता है। इसका तो अनुभव होगा, मुझे स्वयं अनुभव है, कितना 2 घंटे एक बच्ची रोती रही है, और मैंने उसको कहा कि तू मेरी गुरु बन गई है क्योंकि तू मुझे सिखा रही है कि तब तक रोते रहो जब तक माँ नहीं आ जाती। मैंने संभालने को स्वीकार कर लिया था कि मातृमंत्र के अंदर जा नहीं सकती, अच्छे मित्र सब कुछ, और वो रोती रही, इतनी देर रोती रही जब तक 1.5-2 घंटे में सब कुछ सारी चीज़ें फ्रॉम जूस एंड चिप्स, लेकिन चुप ना हो। लेकिन जैसी माँ की गोद में हुई चुप हो गई और फिर मेरी ओर भी स्माइल करने लगी, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये स्टिल्ड ऑल वीपिंग विद इट्स हैंड्स ऑफ जॉय, इट लेट थिंग्स ईविल टुवर्ड्स देयर सीक्रेट गुड। इवन वो जो हमको लगता है कि मार्ग में ये कैसा भयानक दृश्य आ गया, हम बस अगर इतना स्मरण रखें कि कितना भी भयानक दृश्य हो भगवान को ना भूलें, हम उनको ये ऑफर करते चले, तो हम देखेंगे कि वो इस भयानक मार्ग से भी हमें ले जाएंगे और अंत में उन्हीं का साक्षात्कार होगा। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन करने लगते हैं, हम लोग कंप्लेंट करने लगते हैं, बहुत जल्दी डाउट करने लगते हैं, ये हम लोगों की समस्या है। इट लेट थिंग्स ईविल टुवर्ड्स देयर सीक्रेट गुड, इट टर्न्ड रैग्ड फॉल्सहुड इनटू हैप्पी ट्रूथ। इवन जब जिसको कहते हैं कि विरोधी शक्तियों का आक्रमण फॉल्सहुड, जिसने एक ऐसा विकट जाल बुन दिया जिसमें आपको सच और झूठ की पहचान भूल गए आप, तो आप अगर माँ माँ हम नहीं समझ पा रहे इस खेल को, लेकिन आप तो सब खेल को जानती हैं, आप ही एकमात्र हो, हमें ले चलो अपनी ओर, इस मार्ग से भी ले चलो, जो भी मार्ग आपके सामने खुला है, तो आप देखेंगे कि उसको भी माँ रूपांतरित करते हुए एक बहुत सुंदर हैप्पी ट्रूथ में परिवर्तित कर देती हैं। इट्स पावर वॉज टू रिवील डिविनिटी इन्फिनिट कोएवल विद द माइंड ऑफ गॉड, इट बोर विद इन इट्स सेल्फ ए सीड, ए फ्लेम, ए सीड फ्रॉम विच द इटर्नल इज न्यू बॉर्न, ए फ्लेम दैट कैंसल्स डेथ इन मॉर्टल थिंग्स। तो यही वो स्पर्श है जो मनुष्य को अमृतत्व प्रदान कर सकता है, ए फ्लेम दैट कैंसल्स डेथ इन मॉर्टल थिंग्स। और यही वो स्थान है, यही वो अवस्था है, यही वो परम पुरुष है, यही वो ईश्वर है, जहाँ पर हमारी सोल हर रात को और मृत्यु के बाद वहाँ जाती है और वहाँ जाके फिर से अमृतत्व का भाव लेकर के वापस लौट जाती है। इस सीट उनके ही अंदर इसका जन्म होता है और वहीं से हम वापस देह धारण करते हैं और वापस उन्हीं में हम जाकर प्रवेश करते हैं। इट बोर विद इन इट सेल्फ ए सीड, ए फ्लेम, ए सीड फ्रॉम विच द इटर्नल इज न्यू बॉर्न। वही एक है, एक अमेव द्वितीय, लेकिन वो विश्व चेतना में आकर अनेक अनेक बन जाते हैं, वही एक अनेकों अनेकों सोल्स के रूप में वो प्रकट होने लगते हैं। इटर्नल है, इमॉर्टल है, लेकिन वो अनेकत्व धारण करके फाइनाइट, मानो वो टाइम से सीमित हो गए हैं, लेकिन सीमित होते हुए भी वो इटर्नल और इमॉर्टल है हमारी सोल। वो वापस जाती है, उनका टच स्पर्श करके, सब विस्मृत करके, मृत्यु को विस्मृत करके वापस जीवन में आ जाती है अपने अमृतत्व की छाप लेकर। यही हम लोग रुकेंगे। ए सीड फ्रॉम विच द इटर्नल इज न्यू बॉर्न, ए फ्लेम दैट कैंसल्स डेथ इन मॉर्टल थिंग्स, ऑल ग्रू टू ऑल किंडर्ड एंड सेल्फ एंड नियर, द इंटीमेसी ऑफ गॉड वॉज एवरीवेयर, एन इनर हैप्पीनेस, The throb of one adoration, single will, single bliss. अब क्या रूपांतरण होता है उनके स्पर्श के द्वारा? A constant touch of sweetness linked all hearts. तो उन्हीं के द्वारा हम जब सबसे कनेक्ट होते हैं, जब हम सबके अंदर उन एक को देखने लगते हैं, विश्व चेतना में सब अलग अलग दिखाई देता है, उसके परे वन है, लेकिन जब हम उनसे कनेक्ट होकर देखने लगते हैं तो वो एक कृष्ण अनेकों कृष्ण हो जाते हैं। यही उस रास का अर्थ है। The throb of one adoration, single bliss, in a rapt ether of undying love, an inner happiness abode in all, a sense of universal harmonies, a measureless secure eternity of truth and beauty and good and joy made one. हम लोग इनको भिन्न भिन्न देखते हैं, truth, good, joy, beauty, लेकिन उनके अंदर ये सारे एक हैं, एक ही ईश्वर में ये सारे उनके एस्पेक्ट्स हैं। हियर वॉज द वेलिंग कोर ऑफ फाइनाइट लाइफ, उसके उनके परे इन्फिनिट है, और जो वर्ल्ड सोल हैं, जो कॉस्मिक बीइंग हैं, वो इन्फिनिट से जुड़े हुए हैं, वो पूरी तरह सचेत हैं, लेकिन उन्होंने ये घेरा डाला हुआ है। हम इस प्रकार से देख लें कि भगवान ने एक लाइन खींच दी, या हमने किसी ने एक लाइन खींच दी, जब हम लाइन के इस तरफ हैं तो हम घेरे के बाहर हैं, और जब हम लाइन के उस तरफ हैं तो हमने स्वयं को ही घेरे में डाल लिया है। यही डिफरेंस है। जब हम घेरे के अंदर स्वयं को बंधना स्वीकार करते हैं तो हम फाइनाइट हो जाते हैं, जब घेरे के बाहर आ जाते हैं तो वही इन्फिनिटी है। तो वर्ल्ड सोल में, वर्ल्ड सोल पूरी तरह सचेत हैं इसके प्रति, लेकिन घेरे के अंदर जो उन्होंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अपने ही अंदर से निकाल के रखे हैं वो नहीं जानते, तो वो स्वयं को फाइनाइट अनुभव करते हैं। लेकिन जिस दिन हम सचेत हो जाएंगे कि ये घेरा वास्तव में भगवान का बनाया हुआ घेरा है जो एवर एक्सपैंडिंग है, और वो द्वार ढूंढ लेंगे जिसको खोलते ही हम इन्फिनिटी में प्रवेश कर जाएं, तो तब हम फाइनाइट और इन्फिनिट को जोड़ करके एक नया जीवन प्रारंभ करेंगे। यहाँ हम लोग रुकेंगे। ये कैंटो हम लोग शायद 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि द वर्ल्ड सोल, क्योंकि वास्तव में ये वर्ल्ड सोल का वर्णन यहाँ पर है। नमस्ते।